नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय दो जहाजों एमटी अल बहिया और एमटी मोम्बासा पर हुए हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने आज सुबह नई दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन प्रमुख को बुलाकर इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। दोनों जहाजों पर सवार 46 सदस्यीय चालक दल में से 30 भारतीय नाविक थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एमटी अल बहिया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई है और एक घायल हुआ है। एमटी मोम्बासा पर सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन और दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के संपर्क में हैं। इससे पहले अमरीका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलडमरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। दूसरी ओर ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमरीका के दावों को खारिज कर दिया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फिलिस्तीन के दावे का समर्थन किया है। फिलिस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान का दोबारा समर्थन किया है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन ने कहा है कि भारत फिलिस्तीनी लोगों का लंबे समय से सहयोगी रहा है। उन्होंने कल ब्रसेल्स में फिलिस्तीन डोनर ग्रुप की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा तथा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में देश की खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में प्रस्तावित भंडारण नीति और निजी उद्यमी गारंटी PEG योजना की समीक्षा की गई। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है। कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। इंग्लैंड ने भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में बर्मिंघम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 7 ओवर में बिना विकेट खोए 20 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा। वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।